Gana braga gana ranjana Yamuna tira vanachari Yamuna tira vanachari Jaya Radha Madhava Punja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Godadha Srivastadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol
पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्सिष्ट वाइन ग्रेस अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जाए अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए श्री श्री कृष्ण बलराम की जाए श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जाए श्री श्री गौर निताय की जाए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध नौवां अध्याय। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 21। सर्वात्मनः समदृशः हि अद्वयस्य अनहंकृतेः तत्कृतं मति वैषम्यम्। निरवद्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यान् अहंकृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यम्। निरवद्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यान् अहंकृते तत्कृतं मतिवैषम्यम्। निरवद्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहंकृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यम्। निरवद्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृशो वैश्यानहं कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यम्। निरवद्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृशो यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यम्। न क्वचित्। माताजी, सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृतेः कृतं मति वैषम्यम्। सर्वज्ञस्य न क्वचित् सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित्। सर्व आत्मनः, प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाला का समदृशः, सबों पर समान रूप से दयालु होने वाले, दयालु होने वाले का ही निश्चय ही अद्वयस्य परम का अनहंकृते मिथ्या अहंकार की सारी पहचान से मुक्त तत्कृतम उनके द्वारा सब कुछ किया गया मति चेतना वैषम्यम विषमता अंतर निरवद्यस्य समस्त आसक्ति से मुक्त हुआ न कभी नहीं क्वचित किसी अवस्था में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, भगवान होने के कारण वे जन जन के हृदय में विद्यमान हैं, वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और विषमता के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त है, वे समदर्शी हैं। तात्पर्य, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है, वे कैवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार अपनी शक्ति से वे सर्वत्र उपस्थित हैं और उससे अभिन्न हैं। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा चतुर्दिक बटे हुए हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। अतएव वे पहले से ही सारथी तथा समस्त जीवों के उपदेशक या मंत्री हैं। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्च पद में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह तो भक्ति की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। क्योंकि जीवन की भौतिक धारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता हैं, अतः उनके लिए कोई कर्म न तो उत्तम है और न अधम। भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता, अतएव वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है, अतएव वे अपने शुद्ध भक्त का सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। अनुवाद दोहराइएगा, भगवान होने के कारण वे जन जन के हृदय में विद्यमान हैं, वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और विषमता के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त है, वे समदर्शी हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं। अब इस अध्याय में हम एक बहुत अद्भुत बात सुन रहे हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण यहां उपदेश सुनने के लिए अपने भक्तों के साथ आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण मानवीय लीला कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह अपने परम भक्त भीष्म देव से उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। भीष्म देव का यश बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस आली लीला की है। भीष्म देव को अपने पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु या इच्छा मरण की विशेष सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिससे कि वो अपने मृत्यु के क्षण को चुन सकते थे। और भीष्म देव ने सोचा कि मैं उस क्षण को मेरा प्राण त्यागूंगा जब मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने होंगे। वो समझ पाए कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के बाद ही फिर वैकुंठ जगत चले जाएं। ये एक विशेष बात है कि भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पाए। जब युधिष्ठिर महाराज बहुत शोकग्रस्त थे और कोई भी उनको समझा नहीं पा रहा था, कितने सारे ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे लेकिन किसी की बातों से युधिष्ठिर महाराज के मन में जो दुख था वो खत्म नहीं हुआ। बल्कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं प्रयत्न किया फिर भी कुछ नहीं हो पाया, तो भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज के मन को शांत करने का श्रेय केवल भीष्म देव को मिले। और फिर सारे पांडव ऋषि मुनियों के साथ यहां पर भीष्म देव के पास आए, जो कि तीरों की शैया पर लेते हुए थे। सारे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आए और भीष्म देव मन ही मन में सोच रहे थे, देखो यही मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, यहां पर मेरे सामने आए हैं और मुझे कह रहे हैं कि उपदेश करो। इसलिए सबसे पहले जब भीष्म देव ने पांडवों की अवस्था को देखकर शोक व्यक्त किया, उसके बाद तुरंत ही उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान करना आरंभ किया। और पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं, तो सुंदर श्लोक बोल चुके हैं कि एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। कि हे युधिष्ठिर, ये जान लो कि ये व्यक्ति गूढ़ है, बहुत गुप्त रूप से चरति वृष्णिषु, वृष्णि वंश के सदस्यों के बीच में ऐसे घूम फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं। ये कौन है? एष वै भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। आद्यो नारायण पुमान, आदि नारायण है, ये सर्व ऐश्वर्य ऐश्वर्यों से युक्त परम सत्य भगवान है। ये मोहयन मायया लोकम, और उन्होंने अपनी माया शक्ति से सारे लोकों को, सारे प्राणियों को मोहग्रस्त कर लिया है, और इस मोह की वजह से सभी लोग सोच रहे हैं कि वो केवल हमारे कोई मित्र हैं, कोई साथी हैं, वृष्णि वंश के सदस्य हैं। और फिर आगे चल के वो उनको चेतावनी देते हैं कि देखो, ये नहीं समझना कि ये केवल तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे मित्र हैं। हालांकि तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन जान लो अच्छी तरह से भली भांति कि ये स्वयं भगवान है। और फिर और आगे इसका वर्णन भीष्मदेव कर रहे हैं। इस श्लोक में वो कह रहे हैं सबसे पहले सर्वात्मनः, सर्व आत्मनः, कि यही श्री कृष्ण जिनको तुम अपना भाई समझते हो, अपना मित्र, सुहृद, सलाहकार इत्यादि समझते हो, वो वास्तव में सारे प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रारूढानि मायया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं सारे प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूं। तो भगवान हरेक प्राणी के हृदय में के अंदर रहकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। आगे चल के भीष्मदेव कहते हैं समदृशः, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, कोई पक्षपात नहीं करते हैं भगवान। समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, समः अहम् सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों को मैं समान दृष्टि से देखता हूं। न मे द्वेषः अति अस्ति न प्रियः, न किसी से मैं द्वेष करता हूं, न कोई व्यक्ति मेरे लिए ज्यादा प्रिय है, सब मेरे लिए प्रिय है। भगवान के मन में कभी ये भेदभाव नहीं रहता, अपना और पराया ये विचार भगवान के अंदर नहीं रहता। ये विचार तो केवल उन लोगों में होता है जो देहबद्ध है, जिनकी देहात्म बुद्धि है, जो अपने आप को इस शरीर से एक संबंधित समझते हैं। परंतु भगवान में ऐसी कोई धारणा, ऐसी कोई विचार बिल्कुल नहीं होते हैं। आगे भीष्मदेव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होने के नाते निश्चय ही अद्वयस्य अनहंकृते, वो अद्वय है। अद्वय मतलब द्वंद्वों के वश में नहीं है। यह संसार में जो भी कुछ है वो सब द्वंद्वों से ग्रस्त है। द्वंद्व मतलब गर्मी और ठंडी, और ऊंचा और नीचा, ये जो भेदभाव है ये भगवान के अंदर नहीं है। वो पूरी तरह से आध्यात्मिक अवस्था में स्थित है। अद्वय साथ साथ अनहंकृते है, उनके अंदर कोई मिथ्या अहंकार की भावना नहीं है। अहंकार मतलब क्या है? अपने आप को वो समझना जो हम नहीं है। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो ये अहंकार हो जाता है। वैसे अपना सच्चा, अपनी सच्ची पहचान तो ये है कि हम श्री कृष्ण के दास हैं। परंतु जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तब इसको अहंकार कहते हैं, और ये सारे दुख का मूल कारण है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मरुते नर्थं यत्कृतं चाभिपत्यते। ये जो आत्मा है जीव सम्मोह में मोह में पड़ जाता है। आत्मानम त्रिगुणात्मकम, इन तीन गुणों के प्रभाव में आकर, इन तीन गुणों के अधीन होकर अपने आप को इन तीन गुणों का ही एक मिश्रण समझता है। परह अपि, हालांकि वो परह है, इन तीन गुणों से वो परे है, लेकिन मोह में पड़ने की वजह से वो अपने आप को इस संसार का ही एक प्राणी समझता है। सत्य तो ये है कि जीव को इस संसार से, इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। जीव तो भगवान की अंतरंगा शक्ति का एक अंश है। तो यहां भीष्मदेव स्पष्टीकरण कर रहे हैं, अनेक दृष्टिकोण से, अनेक शब्दों से इस बात को दोहराना चाहते हैं ताकि पांडवों के मन में कहीं संशय न हो कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो ये पूरी तरह से अद्वय, अद्वयस्य अनहं कृते तत्कृतम मतिवैषम्यम न क्वचित। तत्कृतम मतलब उनके द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं कभी न क्वचित वैषम्यम, कभी भौतिक प्रदूषण से वो प्रभावित नहीं होते हैं, भौतिक उन्माद उनके कार्यों में नहीं होता है। यह है भगवान। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान वो हैं जिनके स्थान का परिवर्तन कभी नहीं होता है, जो भी कार्य वो क्यों न करें वो भगवान ही रहते हैं। और क्योंकि उनके अंदर कोई अहंकार की भावना नहीं है, कोई द्वंद्व की भावना नहीं है, इसलिए उनके लिए कोई भी कार्य उत्तम नहीं है और कोई भी कार्य अधम भी नहीं है। क्योंकि हम मिथ्या अहंकार के अधीन हैं इसलिए हम ये भेदभाव करते हैं। कई बार ये देखा जाता है, अगर किसी भक्त को बताया जाता है अरे प्रभु जरा ये जूते की सेवा तो करना, अरे जूते की सेवा मैं करूं, कोई मुझे देख ले तो क्या होगा, वो भी मैं गैरवे वस्त्र पहना हुआ, मुझे लोग महाराज कहते हैं और फिर लोग देखेंगे कि मैं जूते चप्पल की सेवा कर रहा हूं तो ये तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के समय कौन सी सेवा ली थी, सारे अतिथियों की चरण धोने की सेवा उन्होंने ली। उनका स्वागत करते थे, उनको बिठाते थे, फिर चरण सेवा करते थे उनकी, चरणों को धोना, चरणों को मालिश करना, मीठे शब्द कहना। वैसे श्री कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं थी ये कार्य करने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने ही उदाहरण से दिखलाना चाहते हैं कि कैसे हमें इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव या उनका स्वरूप यह है कि वो प्रभु है, परंतु समस्या ये है कि वो भगवान बनना पसंद नहीं करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है भगवान, लेकिन भगवान होना उनको अच्छा नहीं लगता। वो क्या होना चाहते हैं, वो अपने भक्तों का दास होना चाहते हैं, वो दास बनना पसंद करते हैं, बस मौका ढूंढते हैं कि कोई ऐसा भक्त मिले जिसकी भक्ति इतनी शुद्ध हो कि मैं उसकी सेवा करना शुरू कर दूं। वैसे देखा जाए तो कोई भक्त न भी हो, कोई व्यक्ति नास्तिक भी हो, भगवान ऐसे व्यक्ति की सेवा भी करते हैं। अनादिकाल से भगवान परमात्मा के रूप में हर एक प्राणी, हर एक जीव के साथ हृदय में घूम रहे हैं, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में, दूसरे छोड़कर तीसरे में, और उस जीव की हर एक इच्छा की पूर्ति भगवान करते हैं, तो सेवा ही तो है। भगवान हर एक जीव की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान की सेवा के बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता। जीव इच्छा मात्र कर सकता है और इच्छा की पूर्ति के लिए जीव पूर्णतया भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। तो जब भगवान अभक्तों के, नास्तिक लोगों की, प्राणियों की, कीड़ों की सेवा कर सकते हैं तो अपने भक्तों की क्यों नहीं करते। तो भगवान चाहते हैं कि मैं मेरे भक्तों का दास हो जाऊं, क्योंकि ऐसे दासत्व की अवस्था में उनको ज्यादा आनंद आता है। तो भगवान इनका स्वरूप है, भगवान का प्रभु स्वामी, लेकिन उनकी इच्छा है दास बनना। अब जीवों के बारे में विडंबना यह है कि उनका स्वरूप है दास, लेकिन वो होना चाहते हैं स्वामी या प्रभु। देखिए दोनों की अवस्था में अंतर कैसा है। तो भगवान जीवों को अपने उदाहरण से दिखाना चाहते हैं कि देखो दास बनने में जो आनंद है वो प्रभु बनने में नहीं है। अरे मैं खुद फंसा हुआ हूं, मैं खुद भगवान हूं, अब क्या किया जाए। मेरे पद को तो मैं बदल नहीं सकता, मेरे अस्तित्व को तो मैं बदल नहीं सकता, मैं जो हूं सो हूं। लेकिन फिर भी भगवान चाहते हैं उनके भक्तों के मन में जो आनंद है उसका स्वाद लेने के लिए, इसीलिए तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को स्वीकार करके आए हैं। राधा भावत्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के हृदय में जो प्रेमा भक्ति है उसका स्वाद लेना चाहते हैं। भगवान कभी कभी ये भी नहीं समझ सकते हैं कि उनके भक्तों को कितना आनंद आ रहा है उनकी सेवा करते करते। तो भगवान सोचते हैं कि मैं इस आनंद से वंचित हूं, ये लोग दास बने हुए हैं, ये सब मेरी सेवा करते हैं, लेकिन उनको ज्यादा आनंद आ रहा है मेरे से, इसलिए मैं भी दास बनना चाहता हूं। ये है भगवान की खूबी। ये एक प्रतियोगिता है, एक स्पर्धा है भगवान और भक्तों के बीच में। भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं और भक्त भगवान की सेवा करते हैं। भगवान बल्कि आनंद लेते हैं भक्तों की सेवा करने में। कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे तो नंद महाराज उनको कहते थे, अरे कृष्ण देखो मेरे पादुका ले आओ। तो और उस समय कृष्ण बहुत छोटे थे और उठा भी नहीं पाते थे पादुकाओं को अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से बहुत कठिनाई से उठा भी लेते थे एक पादुका, फिर अपने सर पर रखते थे क्योंकि उठाना भारी पड़ता था उनके लिए। वो व्यक्ति जिनके लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड केवल तिल के बीज के समान है, जो उनके अंशावतार शेष के फणों के ऊपर स्थित है, तिल के बीज के समान कोई वजन नहीं है, उनके लिए उनके पिता का जो पादुका है वो बहुत भारी लगता है। और फिर वो अपने सर पे उसको लेके लड़खड़ाते हुए किसी न किसी तरह से आकर नंद महाराज को दे देते हैं, फिर दूसरा पादुका ले आते हैं उनको दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भी अपने मित्र अपने भक्त अर्जुन के सारथी बने, जो कि वैसे देखा जाए तो इस दुनिया की दृष्टि से एक अधम कार्य है, लेकिन भगवान ने अपने आप को कम नहीं समझा ऐसे कार्य करते हुए। इसी बात की पुष्टि यहां प्रभुपाद जी कर रहे हैं तात्पर्य, क्योंकि भगवान मिथ्या अहंकार से मुक्त है, क्योंकि भगवान अद्वय है द्वंद्वों से मुक्त है, इसलिए उनके मन में कोई ऐसा संकोच नहीं होता कोई कार्य करते समय, न कोई ऐसे कार्य के प्रति उनकी अभिलाषा होती है कि ये कार्य करूं तो मैं और भी बड़ा आदमी बन जाऊं, नहीं। वो आत्मा राम है, पूरी तरह से अपने आप में संतुष्ट है, वो अपने आनंद के लिए अपने कार्यों के ऊपर निर्भर नहीं है। हम जब कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसकी प्रशंसा लोग करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसे कार्य करते रहने चाहिए ताकि हमें और प्रशंसा मिले, हमारी प्रसिद्धि बढ़ जाए। और अगर ऐसे कोई कार्य से हम बदनाम हो जाते हैं तो हम सोचते हैं अभी ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा नाम खराब हो जाए। तो हम भेदभाव करते हैं और ऐसा भेदभाव आवश्यक है भी इस संसार में, परंतु भगवान के लिए ऐसा कोई विचार नहीं। भगवान ने यह नहीं सोचा कि मैं तो भगवान हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, मैं एक व्यक्ति का एक मनुष्य का ड्राइवर बन जाऊं, सारथी बन जाऊं, तो मैं अपने आप को निकृष्ट अवस्था में, अधम अवस्था में लगा दूंगा? नहीं, भगवान ऐसी चीजों के बारे में कोई परवाह नहीं करते हैं। अद्वय होने के नाते भगवान श्री कृष्ण अपने शक्तियों से अभिन्न है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तिष्वस्थितः। हे अर्जुन, मेरे अव्यक्त, मेरे निराकार रूप में और मेरे अव्यक्त परमात्मा के रूप में मैं सर्वव्यापी हूं, सब जगह मैं फैला हुआ हूं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्ति। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक को समझाते हैं कि अव्यक्त मूर्ति का मतलब यह है कि भगवान केवल उन लोगों के द्वारा देखे जा सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध है। हालांकि भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, फिर भी हर कोई उनको देख नहीं पाता। केवल वो व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, वही व्यक्ति मात्र भगवान को देख पाता है। लेकिन भगवान कहते हैं, हालांकि सारे प्राणी मुझ में हैं, मत स्थाने सर्वभूतानि, परंतु मैं उनमें नहीं हूं, न च अहम तेषु अवस्थितः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हालांकि सब कुछ भगवान में है और भगवान भी अपने शक्ति के द्वारा सब जगह है, लेकिन भगवान का व्यक्तित्व का नाश नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि भगवान सब जगह फैले हुए हैं, तो दूसरा कोई व्यक्ति सोच पाए कि हाँ, इसका मतलब है कि भगवान का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत, अखिलात्मभूत, मैं सारे प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में हूं, मैं सब जगह फैला हुआ हूं, लेकिन फिर भी गोलोक एव निवसति, फिर भी मैं गोलोक वृंदावन में निवास करता हूं। भगवान श्री कृष्ण सदैव व्यक्ति ही रहते हैं, उनके व्यक्तित्व का नाश कभी नहीं होता है। तो यह है भगवान, सर्वव्यापी होते हुए भी अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से हर अवस्था में, हर समय बनाए रखते हैं। यहां तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य और सूर्य के किरणों में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार भगवान और भगवान के शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। भगवान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को सिखलाया है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि भगवान और उनकी शक्तियों में भिन्नता भी है और अभिन्नता भी। तो जब हम कहते हैं कि भगवान सब कुछ है, इसका मतलब है कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान से स्वतंत्र, भगवान से अलग कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो, सब भगवान से ही उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि हालांकि सब कुछ मुझसे आता है और मैं सब कुछ से अभिन्न हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ हूं। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति सोचे कि भगवान की शक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो कोई मिट्टी ले लूं, कोई पत्थर ले लूं, इसको भगवान मान लो और इसकी पूजा करो, नहीं, ये भगवान की शक्ति है और शक्ति होने के नाते भगवान से अभिन्न है, परंतु भगवान नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने आप, अपने अवस्था को, अपनी परिस्थिति को स्पष्ट कर दिया है। न च अहम तेषु अवस्थितः, यह है अद्वय शब्द का मतलब। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने परम पूर्ण अवस्था में स्थित होकर पूरी तरह से अपने भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। वैकुंठ जगत में गोलोक वृंदावन में और कोई कार्य नहीं है भगवान का, वहां भगवान सृष्टि के सहार का कार्य नहीं करते, वहां रह के वो सृष्टि के पालन पोषण का कार्य नहीं करते हैं, नहीं सृष्टि का सृजन का कार्य करते हैं, वो तो विष्णु अवतारों के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण केवल आध्यात्मिक आनंद में रमण करते हैं, यही उनका कार्य मात्र है। यह तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आखिर में, अतएव वे अपने शुद्ध भक्त का सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। तो दोनों की महिमा इसमें है कि भक्त की भक्ति इतनी तीव्र होती है कि भगवान उस भक्त की सेवा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं प्रेम से। इस संदर्भ में एक श्रीमद् भागवत की कथा है जो संक्षेप में आपको सुनाना चाहते हैं, और वो है दुर्वासा मुनि और महाराज अम्बरीश की कथा। महाराज अम्बरीश तो महाराज नाभाग के पुत्र थे। महाराज नाभाग भी बहुत बड़े भक्त थे। महाराज अम्बरीश भी शुद्ध भक्त माने जाते हैं। शुकदेव गोस्वामी उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, उनका चरित्र पढ़ने योग्य है श्रीमद् भागवत में। एक आदर्श है, नवदा भक्ति के सारे नौ अंगों का पालन उन्होंने किया परिपूर्णता से, अपना जीवन सफल बना दिया। महाराज अम्बरीश के राज्य में ऐसा कहा जाता है कि हरेक व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त था, कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करता था, सारी प्रजा राजा की तरह श्रवण कीर्तन के कार्य में लगे हुए रहते थे, कोई प्रजल्प नहीं होता था, एक आदर्श राज्य, आदर्श राजा और आदर्श प्रजा। एक बार हुआ ऐसे कि दुर्वासा मुनि, जो कि एक महान योगी हैं, शिव जी के अंश अवतार हैं, वो वहां पर पधारे और वो इस समय आए जबकि महाराज अम्बरीश अपने एक साल के एकादशी द्वादशी व्रत समाप्त करने वाले थे। एकादशी व्रत के पारण का समय हो गया था और महाराज अम्बरीश ने सारे ब्राह्मणों को भरपूर दान दे दिया था, गवों का दान, सोने का दान और तरह तरह के और दान उन्होंने दे दिए थे। और अब पारण का समय जब आया था तो वो अभी थोड़ा कुछ अन्न ग्रहण करके अपने व्रत को समाप्त करना चाहते थे। ठीक उसी समय पर वहां दुर्वासा मुनि आए भगवान की योजना से। महाराज अम्बरीश ने बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया और उनसे निवेदन किया कि वो भोजन के लिए प्रसाद के लिए बैठें। दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं यमुना में स्नान करके आता हूं, ये जो लीला है यहीं पे पास में हुई मधुवन में यमुना के तट पर। दुर्वासा मुनि चले गए और स्नान करने के बाद अपने संध्या वंदन इत्यादि करते करते काफी समय बीत गया। उधर महाराज अम्बरीश थोड़े चिंतित हो रहे थे, वो सोच रहे थे कि अब पारण का समय जो है वो बीतते जा रहा है और अगर इस समय मैंने उपवास को तोड़ा नहीं तो मेरा एक साल का व्रत जो है वो भंग हो जाएगा। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली और थोड़ा सा जल ग्रहण किया, क्योंकि जल ग्रहण करना ये उपवास तोड़ना भी माना जाता है और नहीं भी तोड़ना ऐसे माना जाता है। तो दुर्वासा मुनि जब लौट के आए तो अपने योग शक्ति के द्वारा उनको ये पता चल गया कि महाराज अम्बरीश ने जल पान किया है। शिवजी आशुतोष माने जाते हैं, आशुतोष मतलब जो बहुत ही जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, साथ साथ वो बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। और दुर्वासा मुनि तो उनके अंश हैं और अपने क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, तो बहुत ही जल्दी बहुत क्रोधित हो गए और महाराज अम्बरीश को डांटने लगे कि अरे देखो कैसा दुर्विनीत व्यक्ति है, कैसा असभ्य व्यक्ति है, उसने ब्राह्मण को बुलाया है, निमंत्रण किया है प्रसाद के लिए, भोजन के लिए, कि बैठिए, और अतिथि के भोजन ग्रहण करने के पहले ही इसने भोजन ग्रहण कर लिया। तो बड़े गुस्से में आकर उन्होंने अपना एक बाल निकाल लिया और बाल से एक भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया जो महाराज अम्बरीश की ओर आ गया बड़े आक्रमणात्मक भाव से। तो महाराज अम्बरीश वहां से हिले नहीं, भागे नहीं अपने जान को बचाने के लिए, नहीं उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बचाओ, केवल अपने मन में भगवान का स्मरण करके रहे, करते रहे और बड़े शांति से वहीं पर खड़े रहे। महाराज अम्बरीश तो शांति से खड़े रहे लेकिन भगवान शांति से खड़े नहीं रह पाए, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र तुरंत वहां पर भेज दिया। सुदर्शन चक्र भी व्यक्ति है, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ का व्यक्तित्व होता है। तो सुदर्शन चक्र या अन्य जो आयुध हैं भगवान के, अस्त्र हैं, वो सब व्यक्ति हैं। तो सुदर्शन इस बात को सहन नहीं कर पाए तो तुरंत वहां पर आए और उस राक्षस का वध कर दिया, भस्म कर दिया उस राक्षस को, और उसके बाद में दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगे। दुर्वासा मुनि इस गर्मी को, इस अग्नि को सहन नहीं कर पाए और वहां से निकल पड़े, भागे, सब जगह भागे, समुद्रों के नीचे जल में गए, पहाड़ों में गए, गुफाओं में गए, सब जगह इधर उधर सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे, लेकिन सुदर्शन उनका पीछा छोड़े नहीं। और आखिर वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी इसके चरणों में पड़कर कहा कि बचाइए हमें। ब्रह्मा जी ने कहा अरे जल्दी से चले जाओ यहां से, नहीं तो मुझे मुसीबत में डालोगे। देखो ये भगवान है, केवल उनके आंखों को ऊपर एक बार भ्रुकुटी को जो ऊपर करके वो सारे ब्रह्मांड का संहार करते हैं। शिव जी, मैं और अन्य देवता जो हैं केवल इनके दास हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वो शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी ऐसे ही उत्तर दिया कि वैसे ब्रह्मा जी मैं और अन्य जो देवता हैं केवल इनके दास हैं, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, आपको स्वयं भगवान नारायण के पास ही जाना होगा। तो अब और कोई चारा नहीं रहा दुर्वासा मुनि के पास, सीधे गए वैकुंठ लोक में, वहां पर भगवान नारायण का दर्शन किया, उनके चरणों में दंडवत किया और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपके शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं नहीं जानता था कि वो कितने महान वैष्णव हैं और वैष्णवों के प्रति अपराध करने से क्या फल मिलता है, इसका साक्षात्कार मुझे अब हो रहा है। मैं बड़ा मूर्ख हूं लेकिन आप पतित पावन हैं, आप बड़े कृपालु हैं, पापी से पापी व्यक्ति के हृदय में आपका नाम अवतार का जब उदय हो जाता है तो वो नरक से भी बच सकता है और आपके धाम में पहुंच सकता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे बचाइए आपके सुदर्शन चक्र से। तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने दुर्वासा मुनि को बहुत अच्छे उपदेश दिए, उस समय कई श्लोक कहे उन्होंने जो हमारे लिए सुनने योग्य है। उन्होंने कहा अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। उन्होंने कहा कि हे दुर्वासा देखो मैं कुछ नहीं कर सकता इस समय, अहम मैं भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं, पराधीन हूं, ही अस्वतंत्र इव द्विज, हे द्विज हे ब्राह्मण मैं स्वतंत्र नहीं हूं। हालांकि शास्त्र में कहा गया है कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, ये तो श्रीमद् भागवत का पहला ही श्लोक का कथन है ना, स्वराट, कि भगवान श्री कृष्ण स्वराट हैं, स्वराट मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र, किसी के ऊपर भी भगवान निर्भर नहीं है, स्व आश्रय आश्रय, स्व स्व आश्रय आश्रय, अपने ही निजी आश्रय है वो, और कोई उनका आश्रय नहीं है। और वही भगवान अब कह रहे हैं उसी श्रीमद् भागवत में कि मैं अस्वतंत्र हूं, मैं मुझ में कोई स्वतंत्रता नहीं है। साधु भी ग्रस्त हृदय, मैं मेरा हृदय जो है पूरी तरह से साधुओं के वश में है, मैं साधु ग्रस्त हूं, साधुओं ने मेरे हृदय को वश में कर लिया है। भक्तेर भक्त जनप्रिय, क्योंकि ये साधु लोग मेरे भक्त होते हैं। इतना ही नहीं है दुर्वासा मुनि, न केवल मेरे भक्त मेरे लिए प्रिय हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो भी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। भक्तेर भक्त जनप्रिय है। इस प्रकार से दुर्वासा मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनके भक्त कितने महान होते हैं और उनका उनके भक्तों के साथ में क्या संबंध होता है। आगे भगवान कहने लगे, नाहम आत्मानम आशासे मद भक्तै साधुवीर विना श्रियम चात्यांत कीम ब्रह्मन येषां गतिर अहम परा। भगवान दुर्वासा मुनि से कहने लगे, न अहम आत्मानम आशासे, मैं आशा नहीं करता आत्मानम उस आध्यात्मिक आनंद का, नहीं मैं आशा करता हूं श्रियम च अत्यंत कीम ब्रह्मन, मेरे जो परम ऐश्वर्य हैं, मैं षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हूं, लेकिन इन ऐश्वर्यों की आशा भी नहीं रखता, आध्यात्मिक परम आनंद की आशा भी नहीं रखता। किस अवस्था में आशा नहीं रखता? मत भक्तैर साधुनाम विना, मेरे भक्तों के मेरे साधुओं के बिना मुझे आध्यात्मिक आनंद में कोई रुचि नहीं, मेरे ऐश्वर्यों में कोई रुचि नहीं, क्योंकि मेरे भक्त जो हैं ये शाम गतिर अहम परा, उन्होंने अपने मन में केवल मुझे अपनी गति बना ली है, मेरे अलावा कोई गति मेरे भक्तों के लिए नहीं है। क्योंकि उनकी भावना ऐसी है इसलिए उनके बिना मैं रह नहीं सकता, और उनके बिना मुझे सारा मेरा आध्यात्मिक जगत शून्य दिखाई पड़ता है। जैसे भक्त की भावना होती है गोविंद विरहेण में कि शून्यायतम जगत सर्वम, जैसे महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में कि गोविंद के बिना शून्य लग रहा है सारा जगत, उसी प्रकार से भगवान को भक्तों के बिना सब कुछ शून्य दिखाई पड़ता है। ये है विशेष गुण भगवान के। और आगे फिर वो कहते हैं, ये दारागार पुत्रात् प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम जाता है कथम ताम त्यक्तुम उत्सहे। ये जो मेरे भक्त हैं हित्वा माम शरणम जाता है, उन्होंने कुछ त्याग दिया है मेरे शरण में आने के लिए। क्या क्या उन्होंने त्याग दिया है? दार, दार मतलब पत्नी, अगार मतलब घर, पुत्र बच्चे, आप्त मतलब सगे संबंधी, प्राणान अपने कभी प्राण को भी त्याग देने के लिए वो तैयार होते हैं, और वित्तम धन, इमं परम इन सब चीजों को वो त्यागने के लिए तैयार होते हैं। परम मतलब स्वर्गलोक की प्राप्ति या निराकार ब्रह्म की प्राप्ति, इन सब चीजों को मेरे भक्त केवल मेरे लिए त्यागने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर कथम ताम त्यक्तुम उत्सहे, मैं ऐसे भक्तों को भला कैसे त्याग सकता हूं? ये संभव नहीं है। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधव समदर्शनः वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या सत् स्त्रियः सत् पतिम यथा। बहुत सुंदर उपमा दी है भगवान ने यहां पर। सत् स्त्रियः सत् पतिम यथा वशे कुर्वन्ति, जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने सत् पति को वश में करती है सेवा करके, उसी प्रकार से मेरे भक्त मुझे वश में करते हैं। मयि निर्बद्ध हृदयाः, तो देखिए सुंदर उदाहरण दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और कहते हैं कि किस तरह मेरे भक्त मुझको वश में कर लेते हैं उनकी सेवा के द्वारा, उनकी भक्ति के द्वारा। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोन्यात् कालविप्लुतम्। मत्सेवया, मेरी सेवा के द्वारा वो इतने संतुष्ट होते हैं, न इच्छन्ति सालोक्यादि चतुष्टयम्, कि किसी भी अन्य चीज की इच्छा नहीं करते, भले वो सालोक्य आदि चतुष्टम मतलब चार मुक्तियां, जैसे सारूप्य, सालोक्य, सारूप्यम और सारष्टि, ये चार भक्तों के लिए जो मुक्तियां उपलब्ध हैं, सायुज्य की बात तो दूर है, मेरे भक्त इन चीजों में बिल्कुल इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि वो मत सेवया प्रतीतम थे, ये साधारणतः मेरे भक्तों को प्राप्त हो सकता है अगर वो चाहते हैं तो, लेकिन वो इतने संतुष्ट हैं मेरी सेवा में कि इन चीजों को बिल्कुल नहीं चाहते। और अंततः ये प्रसिद्ध श्लोक उन्होंने कहा, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मत अन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागति। मैं केवल मेरे भक्तों को जानता हूं और मेरे भक्त केवल मुझे जानते हैं, मुझे बिना भक्त कुछ नहीं जानते, मेरे भक्तों के बिना मैं कुछ नहीं जानता। साधवो हृदय मह्यम, मेरे हृदय में मेरे भक्त हैं और मेरे भक्तों के हृदय में मैं हूं। तो ऐसा प्रवचन भगवान ने दुर्वासा मुनि को दिया, और इस छोटे से प्रवचन में हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि भक्त की महिमा क्या है और भक्त और भगवान का संबंध कैसा है। भगवान वशीभूत पूरी तरह से वश में आ जाते हैं अपने भक्त के, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी तीव्र और शुद्ध होती है। तो फिर भगवान ने दुर्वासा मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, ये जान लो कि विद्या और तपस्या ये ब्राह्मण के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, शुभ होता है, परंतु अगर कोई दुर्विनीत व्यक्ति ऐसे तप करता है और विद्या को प्राप्त करता है तो असर विपरीत होता है, वो हानिकारक हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति अगर मेरे भक्त के विरुद्ध किसी शक्ति का प्रयोग करता है तो वही शक्ति जो है उल्टा उसके ऊपर आ जाएगी, उसके ऊपर जो आतताई है उसके ऊपर वही शक्ति का प्रयोग खुद ब खुद हो जाएगा। इसलिए जाओ, मेरे भक्त अम्बरीश महाराज के चरणों में क्षमा याचना करना, तब जाके सुदर्शन चक्र जो है तुम्हारे पीठ से हट जाएगा। तो दुर्वासा मुनि शीघ्र ही वहां पर गए अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज ठीक उसी जगह में पूरे एक साल खड़े रहे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते हुए, क्योंकि दुर्वासा मुनि तो सारे ब्रह्मांड में इधर उधर जा रहे थे ना, तो हालांकि उनके लिए शायद एक साल नहीं बीता हो, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से पूरा एक साल बीत गया था। और वहां से हिले नहीं अम्बरीश महाराज, और नहीं उन्होंने भोजन ग्रहण किया, केवल जल पान किया, क्योंकि अतिथि को भोजन खिलाना था ना, अभी तक अधूरा था, उनको खिलाया नहीं था अभी तक दुर्वासा मुनि को। तो दुर्वासा मुनि लौट कर आए, सीधा दंडवत प्रणाम किया और अम्बरीश महाराज के चरणों को ऐसे पकड़ लिया, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। और अम्बरीश महाराज को बड़ी लज्जा आई कि अरे, मैं तो एक गृहस्थ हूं, एक राजा हूं, क्षत्रिय हूं, और ये इतने बड़े ब्राह्मण हैं, योगी हैं, और ये मेरे चरणों में ऐसे दंडवत कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। शर्मा गए अम्बरीश महाराज। और फिर दुर्वासा मुनि ने कहा, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, कृपया ये सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कीजिए कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। तो अम्बरीश महाराज ने तुरंत सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि हे सुदर्शन, ये तो ब्राह्मण है, इनकी लाज रखिए, अगर मेरे परिवार में हम सब ने कोई यज्ञ किए हो, कोई भक्ति की हो, कोई तपस्या की हो, तो कृपया आप इस ब्राह्मण का पीछा छोड़ दें। तुरंत एक क्षण में सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वहां से निकल गए। दुर्वासा मुनि ने बहुत धन्यवाद किया अम्बरीश महाराज का और फिर प्रसाद ग्रहण किया, आराम से अम्बरीश महाराज ने उनको अच्छी तरह से खिलाया और बाद में दुर्वासा मुनि आकाश पथ से चले गए और जाते जाते अम्बरीश महाराज और कृष्ण भक्तों का गुणगान करते करते चले गए कि आज मैं समझ गया कि कृष्ण भक्त मतलब क्या चीज है। तो इससे हम जान सकते हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं और ऐसे अवस्था में वो उनको बहुत आनंद आता है। भक्तों की सेवा करने में कभी अपने आप को वो कम नहीं समझते हैं कि मैं कोई अधम कार्य कर रहा हूं, मैं भगवान हूं लेकिन फिर भी मैं ऐसे सेवा कर रहा हूं, ऐसे कभी नहीं सोचते। तो भगवान के उदाहरण को देखते हुए भगवान के पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए और वैष्णवों की और अन्यों की भी इसी भावना से सेवा करनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक निकृष्ट कार्य है, अधम कार्य है, नहीं, बल्कि वैष्णवों की सेवा करना, सारे प्राणियों की सेवा करना, ये हर एक जीव का और विशेष करके वैष्णव का कर्तव्य होता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी की कोई टीका टिप्पणी या प्रश्न? शमिक ऋषि प्रभु बैठे हैं, सार्वभौम प्रभु बैठे हैं, आप कुछ टीका बोल करना चाहेंगे? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।